नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज हम भारत के संघवाद फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, करंट गवर्नमेंट में क्या स्थिति है और क्यों इस प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है, उस पर हम बात करेंगे। यह आर्टिकल CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी डी राजा के द्वारा लिखा गया है, एक अपोजिशन के लीडर के द्वारा लिखा गया है, तो इस बात का भी हमें इस आर्टिकल को डिस्कस करते टाइम ध्यान रखना होगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ, उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार, आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। तो चलिए आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल पे आने के पहले जैसे मैंने बताया कि ये आर्टिकल जो है एक अपोजिशन के लीडर के द्वारा लिखा गया है, डी राजा के द्वारा, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा इसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर थोड़ा बायसनेस आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको ज़रूर दिखेगा, लेकिन कोशिश की गई है कि हम एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को डिस्कस करें। सबसे पहले अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पावर्स जो है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, फिर वो भले ही एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पावर हो या फिर वो जुडिशरी की पावर है, इनको सेंटर और स्टेट अर्थात स्टेट और सेंटर के लेवल पे डिवाइड किया जाता है। खासकर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में फेडरलिज्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है अलग अलग हम प्रोविजंस के द्वारा। तो क्या प्रोविजंस है ये? 7th शेड्यूल 7वें अनुसूची, जब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की देखते हैं तो उसमें तीन लिस्ट दी गई है, स्टेट सेंट्रल और कंकरेंट, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो इनमें किस गवर्नमेंट को या किस लेजिस्लेचर को कौन सा कानून बनाने का अधिकार है, किस विषय पर, इसके बारे में जानकारी दी गई है। उसके अलावा 73rd और 74th अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी हमारी एक थर्ड टायर जो है, तीसरा स्तर जो है सरकार का, वो भी तैयार होता है, जो कि हमें जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका स्तर पर हमें देखने को मिलता है, जो हमारे क्षेत्रीय, हमारे सिटी या हमारे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर रहती है, जो कि हमारी ग्रास रूट डेमोक्रेसी को और मजबूत करती है। उसके अलावा आर्टिकल 246 और आर्टिकल 243G के अंदर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है, इन पावर का डिवीजन दिखता है। उसके अलावा आर्टिकल 263 भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात करता है कि यहाँ पर अंतर राज्य समितियाँ होगी, काउंसिल्स होंगी, उनके बारे में बात करता है। अब अगर हम करंट स्थिति में अभी देखें तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को एक यहाँ पर नुकसान हुआ है सरकार के कुछ रीसेंट बदलावों के कारण। उनमें से एक प्लानिंग कमीशन है। इस NDA गवर्नमेंट जब पहली इनका टेन्योर आया, उस पहले टेन्योर में ही जो सबसे बड़ा कदम एक लिया गया था उसमें ये था कि अब प्लानिंग कमीशन के बजाय नीति आयोग होगा। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग का अगर हम देखें तो बहुत सी सिमिलैरिटी भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसे फेडरल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ पर प्लानिंग कमीशन के जाने के बाद में जो एक फेडरल नेचर हुआ करता था इस कमीशन का, वो अपने आप में खत्म हुआ है नीति आयोग के आने के कारण। तो प्लानिंग कमीशन स्क्रैप हो गया, जिसमें एक फेडरल नेचर हुआ करता था, लेकिन वो हमें नीति आयोग में देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत यहाँ पे यूनियन को स्टेट से कंसल्टेशन करना होता था, लेकिन नीति आयोग में भी ये चीज़ हमें अब्सेंट गायब दिखती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटर स्टेट काउंसिल भी जो है पिछले 7 सालों में एक भी बार नहीं बैठी है, जो कि एक और चीज़ खड़ी करता है संघवाद के स्ट्रक्चर के ऊपर, फेडरल इंस्टीट्यूशन जो है हमारे देश का उस पर एक और ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नाम से ही पता चलता है कि नेशनल डेवलपमेंट हमारे राष्ट्र के विकास के लिए काउंसिल है, इसकी भी बैठक काफ़ी लंबे समय तक से नहीं हुई है। उसके अलावा GST आया है, GST में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करते थे स्टेट्स, उनकी पावर पे एक बहुत बड़ी कटौती हुई है, जिसके कारण बहुत से स्टेट को कॉम्पनसेशन भी केंद्र के द्वारा दिया गया है और दिया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत से सेंसिटिव डिस्कशंस ऐसे हैं जिसमें स्टेट लेजिस्लेशन को बाहर रख दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें एग्रीकल्चर बिल्स आए, इन एग्रीकल्चर बिल में बात की गई कि ये स्टेट की पावर है लॉ बनाने की, उस पावर को ओवरस्टेप किया है केंद्र सरकार ने, हमारे सेंट्रल लेजिस्लेशन ने। एक और उदाहरण ये देखने को मिलता है कि नीट की परीक्षा जिस तरीके से लागू की गई उसको देखते हुए तमिलनाडु और कुछ और साउथ के स्टेट्स का विरोध देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी स्टेट को कंसल्ट नहीं किया गया जब आप कोई ऐसी स्कीम लेकर आ रहे हैं या ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे स्टेट्स को बड़े रूप में प्रभाव पड़ेगा या ये उनके मुद्दों से जुड़ी हुई चीज़ है। उसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई वो भी कहीं ना कहीं फेडरल नेचर को इंक्रोच कर रही है, उस पर एक अतिक्रमण कर रही है, ये इस आर्टिकल में कहा गया है। हाल ही का उदाहरण देखें तो 26 जनवरी के दिन जैसे आप देखते हैं हर राज्य की झांकी आती है, तो उसी में हमें ये देखने को मिला कि इस वक्त इस समय जो 26 जनवरी में होने वाली है परेड और उसमें जो झांकी आने वाली है उसमें केरल, बंगाल और तमिलनाडु ये तीन राज्य हैं जिनकी झांकियों को कैंसिल कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों ही राज्यों में अपोजिशन की गवर्नमेंट है। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे तो कहीं ना कहीं ये जो डाइवर्सिटी को ख़त्म करने की चीज़ की जा रही है ये हमारे गणतंत्र के लिए एक हानिकारक है। और एक जो होमोजेनिटी अर्थात समानता का जो एक ऑब्सेशन है, बताया गया है कि समानता का जो एक ऑब्सेशन है ये हमारे सेक्युलरिज्म को, टॉलरेंस को और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को ख़त्म करता है और इससे हमारे डेमोक्रेसी, हमारे रिपब्लिक दोनों को ही हानि है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है।